समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
कर्म से कोई नहीं बच सकता, कर्म तो करना ही है, तभी तो आप अच्छे फल की आशा कर सकते हैं। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर आज सवेरे कार्यक्रम एक नई सुबह के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं, लेकर देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूँ मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन। सुभद्रा, आपको भी मेरा नमस्कार।
Hello, Mukesh. Good morning to you and a warm welcome to all our listeners tuned in to hear our news magazine program, Aaj Savere. So as always, we have plenty to share with you all today. So without wasting any time, we begin with some news headlines, Mukesh.
जी, बिल्कुल। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण में 12 जिलों के 38 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कुछ संवेदनशील मतदाता केंद्र में शाम 4 बजे मतदान समाप्त होगा। इस चरण में 528 उम्मीदवार मैदान में हैं। महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों के लिए आज एक ही चरण में वोट डाले जा रहे हैं। कुल 4136 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में 1,427 मतदान केंद्रों पर लगभग 5,00,000 चुनाव कर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल और उत्तराखंड की कुल 15 विधानसभा सीटों के लिए भी आज ही उपचुनाव हो रहा है। सभी राज्यों के लिए मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विपक्ष के नेता अमरनाथ कुमार बौरी और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो और कल्पना सोरेन शामिल हैं।
Prime Minister Narendra Modi participated in the third session of the G20 summit on sustainable development and energy transition at Rio de Janeiro in Brazil yesterday. Spokesperson in the External Affairs Ministry Randhir Jaiswal said Mr. Modi highlighted the importance of accelerating efforts to ensure a cleaner, more sustainable future for all, including through mainstreaming Varanasi principles on life and initiatives such as the International Solar Alliance, One World, One Sun, One Grid, and the Global Biofuel Alliance. The Prime Minister noted that during the New Delhi G20 summit, the group had resolved to triple renewable energy capacity and double the energy efficiency rate by 2030. He welcomed Brazil's decision to take forward these sustainable development priorities. During the address, Prime Minister elaborated on the steps taken by India to foster sustainable development. He highlighted the achievements of India being the first G20 country to meet its Paris commitments.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो डी जेनेरो में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद गयाना की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वर्ष 1968 के बाद से भारत के किसी प्रधानमंत्री की ये पहली गयाना यात्रा है। श्री मोदी जॉर्ज टाउन में गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री दूसरे कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। श्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, जैव ईंधन, रक्षा और कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग में सुधार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने चिली और अर्जेंटीना के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ताएं की हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने G20 शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपी। इसके साथ ही 19वां G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया।
The Indian Army successfully concluded the multilateral annual joint humanitarian assistance and disaster relief HADR exercise Sanyukt Vimochan 2024 held on Monday and Tuesday in Ahmedabad and Porbandar, Gujarat. Chief of the Army Staff General Upendra Dwivedi attended the event showcasing India's disaster response readiness. Meanwhile, in a significant display of military prowess, the Indian Army, Indian Navy, the Indian Air Force jointly conducted the exercise Purvi Prahar at Mechuka in Arunachal Pradesh. The exercise conducted from November 10 to 18 marked a significant milestone in joint warfare capabilities featuring unprecedented unprecedented coordination between the Army, Navy and Air Force in the Eastern Theatre. The Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology, SKUASD, Jammu is going to host a four-day National Agriculture Summit 2024 from today. The initiative aims to equip farmers with knowledge and tools to adopt high-tech solutions, improve productivity and adapt to global agricultural challenges. Russian President Vladimir Putin has signed a decree approving Russia's updated nuclear doctrine. The decree, published on the Kremlin website, stated that aggression by any state in a military coalition or bloc against Russia or its allies is seen as aggression by the entire bloc as a whole. It said the aggression from a non-nuclear state with the involvement or support of a nuclear power will be regarded as a joint attack on Russia. The 55th edition of the International Film Festival of India, IFFI 2024, will kickstart with a much-anticipated opening ceremony at Dr. Shyama Prasad Mukherjee Stadium in Panaji, Goa today.
पर्दे पर सब राजों से पर्दे को उठाती तस्वीरें
ओ दिल बहलाती कभी हंसाती कभी रुलाती तस्वीरें
ये हिंदुस्तानी सिनेमा ये मूवीज ये फिल्में रहती है करोड़ों के दिल में भारत के सिनेमा की है जय जयकार भारत के सिनेमा
The star-studded event will begin at 5 p.m. The opening ceremony will be hosted by Indian film actors Abhishek Banerjee and Bhumi Pednekar. Speaking exclusively to Akashvani, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting Sanjay Jaju said that Prasar Bharati OTT will be launched in the opening ceremony.
OTT कल यहाँ पे लॉन्च होने जा रहा है तो उस OTT के द्वारा इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए साथ ही साथ हम पूरा आर्काइवल मटेरियल भी उसमें लेके आ रहे हैं दूरदर्शन का फिल्म डिवीजन का हमारे डॉक्यूमेंट्रीज हैं हमारे फोटोज हैं उन सबको लेकर इस OTT के साथ में लाया जा रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये अपनी एक शख्सियत हासिल करेगा और इसके साथ बहुत लोग जुड़ेंगे और अपने आप में एक बहुत बड़ा मीडियम बनेगा ना केवल स्ट्रीमिंग मटेरियल देखने के लिए बट इवन लाइव मटेरियल भी कई चैनल्स का भी मटेरियल इसके ऊपर दिखाया जाएगा
This year, Australia takes center stage as the country of focus. The Janavi Dance Clan from Australia will present a cultural performance showcasing the richness of Australian indigenous culture. Apart from this, there will be a 90s rewind in the dance explosion segment on the magic of Bollywood's iconic dance hits from the 90s. A poetic tribute titled Timeless Souls will also be presented, celebrating the legacies of legendary figures Raj Kapoor, Tapan Sinha, Akineni Nageshwara Rao, and the unforgettable Muhammad Rafi through a powerful blend of visuals, music and poetry. Michael Gracie's directorial Better Man will be the opening film of Red Carpet Premiere at INOX Panjim. The movie will premiere at 2 p.m. It offers a captivating glimpse into the life of the iconic British pop star Robbie Williams. In a significant first for the festival, the opening ceremony will feature live Indian Sign Language interpretation, ensuring that IFFI remains accessible to all. The initiative aligns with Sabka Manoranjan or Entertainment for All vision. Known for celebrating the best of Indian and international cinema, IFFI promises an exhilarating lineup of films, events and cultural experiences this year. Speaking at the event, the Director General of Akashvani, Dr. Pragya Paliwal Gaur, shared insights into the meticulous preparations for the broadcast of the opening ceremony and all key events throughout the festival.
आकाशवाणी पूरी तरह से तत्पर है हमेशा ही आकाशवाणी ने अपना पूरा योगदान दिया है और विशेष प्रोग्राम्स के जरिए कार्यक्रमों के जरिए न्यूज के जरिए आम जनता तक पहुंचाता रहा है और इस बार की यदि विशेषता की बात करें तो जो ओपनिंग सेरेमनी होती है क्लोजिंग सेरेमनी होती है जो उद्घाटन होता है और समापन समारोह जो होता है उसके पहले एक रेड कार्पेट इवेंट होता है और बड़ा लोगों का उत्साह रहता है कि देखने के लिए कि कौन स्टार्स आ रहे हैं और उनकी क्या विशेषता है क्या कहना चाहते हैं उनको कैसा लग रहा है तो ये ये चीज इस बार आकाशवाणी में जोड़ी गई है और एक रेड कार्पेट का भी कवरेज हम लोग करेंगे आकाशवाणी के माध्यम से। पूरी टीम यहाँ पे सजग है और राष्ट्रीय हुकअप पे FM के सारे चैनल्स पे ये 4:30 को प्रसारित किया जाएगा। रेड कार्पेट से शुरू होगा और उसके बाद में उद्घाटन जो सेरेमनी है पूरा समारोह वो प्रसारित किया जाएगा। और साथ ही जो प्रतिदिन 20 से लेके 28 तक रोज 10 बजे एक विशेष कार्यक्रम रेडियो रिपोर्ट, एक तरह से पूरे दिन में क्या गतिविधियां रही इफी से जुड़ी हुई, कौन कौन मास्टर क्लास में कितने बड़े कलाकारों ने जोड़ आके अपने वक्तव्य दिए, लोगों से बातचीत की, कौन सी प्रीमियर हुई, ये सब एक जानकारी पूरी इस रेडियो रिपोर्ट में दी जाएगी। साथ ही एक नेशनल हुकअप पे कार्यक्रम होता है परिक्रमा, उसमें भी एक स्पेशल कैप्सूल डेली का दिया जाएगा और प्रति घंटा जो हमेशा से पणजी आकाशवाणी करता आया है वो नेशनल नेटवर्क पे भी प्रसारित होगा, प्रति घंटा हाइलाइट्स वो दी जाएंगी।
द डायरेक्टर जनरल इनवाइटेड सिनेमा लवर्स टू द कल्चरल एक्सट्रावेगेंजा।
सभी श्रोताओं से ये आग्रह है कि जरूर सुने और आकाशवाणी के माध्यम से इफी में क्या हो रहा है वो आपको ताज़ा तरीन जानकारी दी जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रोता जुड़े ऐसी मैं कामना करती हूँ।
और सुभद्रा, आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है मेट्रो न्यूज का, तो सबसे पहले चेन्नई के समाचार सुने।
यस, स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई, टू वार्न पीपल अबाउट द स्ट्रेइंग ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स, ऑफिशियल्स ऑफ द फॉरेस्ट डिवीजन इंस्टॉल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस इनोवेटिव सिस्टम इज ऑपरेशनल इन द होजूर फॉरेस्ट डिवीजन। इट विल जनरेट प्रॉम्प्ट वार्निंग मैसेजेस टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड रेलवे ऑफिशियल्स ऑन जायंट स्क्रीन्स अलॉन्ग द चेन्नई बेंगलुरु हाईवे। The system has avoided several instances of wild elephants getting hit by moving trains. The initiative is first in India, aims to mitigate conflicts during the elephant migration season from October to January. Another news from Chennai, a team of vets from Chennai removed the stillborn fawn from a spotted deer in IIT Madras. A pregnant deer on the IITM campus was found struggling to deliver a fawn. The deer was rescued by the wildlife authorities and the veterinarian from Besant Memorial Animal Dispensary. During the diagnosis, the vets found that the fawn had died already, so the team decided to remove the diseased fawn. Once the team completed the dissection process, the mother deer was given good care and the health progress was monitored by the team.
और अब चलते हैं मुंबई की खबरों की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिजर्व बैंक की कुछ निवेश योजनाओं को शुरू करने का दावा करने वाले फर्जी वीडियो के संबंध में कड़ी चेतावनी जारी की है। बैंक ने स्पष्ट किया है कि न तो उसके गवर्नर और न ही उसका कोई अधिकारी ऐसी गतिविधियों में शामिल है और न ही उसका कोई समर्थन करता है। इसके अलावा RBI ने इस बात पर बल दिया कि वो जनता को वित्तीय या निवेश सलाह नहीं देता है। और विधानसभा चुनाव के दौरान सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राज्य सशस्त्र पुलिस बल और राज्य रिजर्व पुलिस बल के 2,00,000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया है। विधानसभा चुनावों के लिए आचार संहिता 15 अक्टूबर को लागू की गई थी और इस अवधि के दौरान आचार संहिता से संबंधित कुल 532 FIR दर्ज की गई हैं।
Bengaluru News Now, during the first day of Bangalore Tech Summit in Karnataka State Capital yesterday, MOUs were signed to set up 3 new tech business incubators to support startups. The incubators will facilitate the budding startups with infrastructure, equipment, mentoring, branding advice, networking, legal aid, financial and technical support, and protection of intellectual property rights. Another major announcement was made to introduce startup awards from the next edition of Tech Summit to recognize excellence and innovation among the startups. During the inauguration of the international exhibition at the summit, Gravity Industries presented a wearable suit equipped with multiple jet engines that can be worn by a person and fly. The 5 small gas turbines worn on the arm and at the back creates enough thrust to lift the man up, hover around and maneuver in the air.
और कोलकाता की खबर पर नजर डालते हैं। आज से गोवा में शुरू हो रहे 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 3 बंगाली फिल्म प्रदर्शित होंगी। युवा फिल्म निर्देशक सौकुर्जो खोशाल की भूतपरी और सौरभ पालोधी की अंकों की कथाओं को प्रतिस्पर्धी श्रेणी में प्रदर्शित किया जाएगा, वहीं अमर बॉस को भारतीय पैनोरमा अनुभाग में दिखाया जाएगा।
Hyderabad News Now. In Telangana, night temperatures recorded significant dip and Sangareddy district recorded the coldest at 10.6 degrees Celsius at Nialkal, while Hyderabad district recorded its lowest at 12.6 degrees Celsius at Ramachandrapuram. IMD officials informed that cold weather conditions have intensified in parts of Hyderabad and elsewhere in the state as winter finally appears to have firmly set in across all parts of the Telangana state. Accordingly, the minimum temperatures dropped significantly last night in many districts including Rajanna Sirsila, Medak, Adilabad, Siddipet, Nirmal, Kamareddy and Hyderabad, among others. Telangana State Planning and Development Society officials inform that this is the first spell of low temperatures being recorded in the state during the current season, with Nialkal and Kohir in Sangareddy district recording the lowest temperatures for the second consecutive day.
और चलते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली. दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि 78,67,000 यात्रियों ने मेट्रो में सफर किया है. ये मेट्रो के इतिहास में एक रिकॉर्ड है. मेट्रो ने बताया कि ये आंकड़े दिल्ली मेट्रो पर विश्वसनीयता और दिल्ली एनसीआर के अधिकांश हिस्सों में निर्बाध यात्रा के लिए बढ़ते विश्वास को दर्शाते हैं. निगम राजधानी में वायु गुणवत्ता की गिरावट को देखते हुए पिछले सप्ताह के दिनों में 60 अतिरिक्त फेरे चला रहा है. और दिल्ली एनसीआर में गिरते वायु गुणवत्ता सूचकांक के मद्देनजर गुरुग्राम में सभी निजी संस्थानों और कॉरपोरेट दफ्तरों को आज से 50% वर्क फ्रॉम होम नीति लागू करने का परामर्श दिया गया है. उपायुक्त कार्यालय ने बताया कि वायु प्रदूषण के गंभीर प्रभाव को देखते हुए ये निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन समिति के निर्देशों के अंतर्गत लिया गया है. ये निर्णय अगले आदेश तक लागू रहेंगे. और सुभद्रा, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट आ रही है. कल शाम 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में 452 दर्ज किया गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के पंजाबी बाग में वायु गुणवत्ता सूचकांक 454, बवाना में 464, वजीरपुर में 465, आनंद विहार में 465 और आरकेपुरम में 448 दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अगले 2 दिन तक सुबह के समय और रात में धुंध और हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है. और अब बात करते हैं खेल जगत की हलचल की. तो खेल जगत की खबरें लेकर निखिल पहुंच गए हैं स्टूडियो. निखिल, खेल की शुरुआत कहां से कर रहे हैं?
मुकेश, आज हम खेल खबरों की शुरुआत हॉकी से कर रहे हैं. तो अपने श्रोताओं को बता दें कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज भारत का मुकाबला चीन से होगा और ये मैच बिहार के राजगीर में शाम 4:45 से खेला जाएगा. और खास बात यह है कि भारतीय टीम टूर्नामेंट में अब तक अजय रही है. भारत 15 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है. सेमीफाइनल में भारत ने जापान को 2-0 से हरा कर जगह बनाई थी फाइनल में. और कांस्य पदक के मुकाबले में आज ही मलेशिया और जापान के बीच मैच होगा. ये मुकाबला दोपहर बाद 2:15 से खेला जाएगा. अब फुटबॉल की हम बात करें तो तमिलनाडु और मणिपुर 78वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के आखिरी दौर में पहुंच गए हैं. तमिलनाडु ने ग्रुप जी में अपने अंतिम मैच में मेजबान आंध्र प्रदेश को 8-0 से हराया. मणिपुर ने अगरतला में ग्रुप डी के मुकाबले में त्रिपुरा को 2-0 से पराजित किया. अब चलते हैं शेंजेन, जहां पर हो रहा है चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट. तो वहां पर आज पीवी सिंधु, मालविका बंसोड, लक्ष्य सेन, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद अपने अपने अभियान की शुरुआत करेंगे. पुरुष डबल्स की बात करें तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की जोड़ी भी आज अपना मुकाबला खेलेगी. इस बीच भारत की अनुपमा उपाध्याय ने पहले दौर में चीन की बेवनझांग को 21-17, 8, 21 और 22-20 से हरा करके शानदार जीत हासिल की. भारत के बी सुमित रेड्डी और एन सिक्की रेड्डी ने मिक्स्ड डबल्स में पहले दौर का मैच जीत लिया है. भारतीय जोड़ी ने अमरीकी जोड़ी प्रेसली स्मिथ और जेनी गाई को 23-21 और 17-21, 21-17 से पराजित किया. वहीं निराशाजनक बात मुकेश ये रही है कि महिला सिंगल्स में आकर्षि कश्यप को जापान की तोमोका मियाज़ाकी से हार का सामना करना पड़ा था. तो फिलहाल मैं खेल खबरों में आपके लिए इतना ही लेकर आया हूं मुकेश.
आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे मुकेश कुमार और सुभद्रा रामचंद्रन के साथ. और आज सवेरे में वक्त हुआ है मौसम का हाल जानने का. तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर मौसम सामान्य रहेगा. सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. कोलकाता का रुख करें तो कोलकाता में आसमान साफ रहेगा. आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. मुंबई में भी आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
Chennai is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 26 degrees Celsius. Maximum will be around 33 degrees. Bengaluru is expected to have fog mist in the morning. Partly cloudy sky will be seen later on. Minimum temperature was 19 degrees Celsius. Maximum will be around 27. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 16 degrees and a maximum of 29 degrees Celsius.
और अब कार्यक्रम के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां पर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं उन घटनाओं को जो आज के दिन हमारे इतिहास का हिस्सा बनी। आज 20 नवंबर है। आज ही के दिन 1815 में यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रूस, प्रशिया, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड ने गठबंधन किया था।
1902 जियो वी डब्ल्यू डे लॉन्ग पेटेंटेड द पेंसिल विद एन अटैच रेजर एंड एवरी डे टूल स्पेशली फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। अनदर इम्पोर्टेंट पेटेंट फॉर दिस डे इज अमेरिकन इन्वेंटर एडविन एच लैंड पेटेंटेड द फर्स्ट कमर्शियल इंस्टेंट कैमरा नोन एज पोलरॉइड विच रेवोल्यूशनाइज्ड फोटोग्राफी।
1866 की बात करें तो आज ही के दिन अमेरिका के वॉशिंगटन में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1917 में आज ही के दिन यूक्रेन गणराज्य घोषित हुआ था और 1955 में आज ही के दिन पॉली उमरीगर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक जड़ा था।
1981, a series of Indian Earth observation satellites called the Bhaskar satellites were launched. They were primarily intended for remote sensing applications and have been launched over multiple missions. These satellites have played a crucial role in various applications that included agriculture, forestry, water resources, urban planning and disaster management.
बिल्कुल। और 1968 में आज ही के दिन अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया था, जबकि 1981 में अफ्रीकी देश बुरुंडी में संविधान अंगीकार किया गया था। 1985 में आज ही के दिन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पहला संस्करण जारी हुआ था और 1997 में आज ही के दिन अमरीकी अंतरिक्ष शटल यान कोलंबिया फ्लोरिडा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। और अब याद कर लेते हैं उन महान हस्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि है। इस क्रम में सबसे पहले सुभद्रा हम याद कर रहे हैं। बहुमुखी प्रतिभाशाली अनेक विषयों के विद्वान, विचारक और कवि श्याम बहादुर वर्मा को आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्होंने हिंदी साहित्य के कई शब्दकोश प्रदान किए हैं। उनके प्रत्येक कमरे में फर्श से लेकर छत तक पुस्तकें ही पुस्तकें नजर आती थीं। श्याम बहादुर वर्मा ने विभिन्न भाषाओं तथा ज्ञान विज्ञान की अनेक शाखाओं का गहन अध्ययन किया। 1953 में उन्होंने अकेले ही हिमालय को पैदल पार कर तिब्बत की यात्रा की थी और उनकी संपूर्ण साहित्यिक सेवाओं के लिए हिंदी अकादमी ने दिल्ली ने वर्ष 1997-98 में साहित्यकार सम्मान प्रदान किया था।
He was called the father of exercise cardiology. Dr. Robert A. Bruce was a pioneer of cardiac medicine, developed the Bruce protocol, a treadmill test used to diagnose heart disease. His theory was that for evaluating the function of the heart, one has to exercise the heart muscles. He categorized individuals by the ability to walk on those machines, which he called the physical fitness index, that became the Bruce protocol. Born in Boston, Massachusetts, USA on November 20, 1916, Dr. Bruce passed away at the age of 87 in 2004.
और आज किराना घराने की हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका हीराबाई बोरोदकर की पुण्यतिथि है। उन्हें कला के क्षेत्र में भारत सरकार ने सन 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। हीराबाई बोरोदकर एक प्रतिभाशाली गायिका रही हैं, बल्कि भारत की पहली महिला कलाकार थीं जिन्हें पुरुषों के वर्चस्व के दौर में लोग कंसर्ट में सुनने आए थे। तो उनका एक गायन सुन लेते हैं। वर्ष 1947 में हीराबाई ने अपने जीवन की सबसे खास प्रस्तुति दी थी। 15 अगस्त के दिन जब देश आजाद हुआ, उन्हें लाल किले पर खास तौर पर आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया था।
Tributes to a man who discovered the cosmos. Well, friends, the Hubble Space Telescope has given humanity a chance to discover the universe, enhanced our understanding of the cosmos. The legacy reflects the work of the telescope's namesake, renowned astronomer Edwin Powell Hubble, who took birth this day in the year 1889. Indeed, friends, his discoveries have taken us beyond the Milky Way and placed us in an ever-expanding universe with countless galaxies beyond our own. He spent his youth honing athletic skills in basketball, football, baseball, track and boxing, while mentally feeding his curiosity. curiosity through science fiction novels. Due to family pressure, he studied law and was a Rhodes Scholar, but Hubble switched gears and obtained a PhD in astronomy from the University of Chicago in 1914, setting his focus on the celestial. And friends, harmonic lead guitar mingling with slide guitar, playing that wonderful fusion of jazz, blues, country called Southern Rock. And who invented it? The Allman Brothers from Georgia. And one of the brothers, Dwayne Allman, was born this day, guitar prodigy who died young. Dwayne went away in a motorbike crash when he was just 24 years old.
भारत की प्रसिद्ध कवित्री निर्मला ठाकुर की आज पुण्यतिथि है। देश के प्रमुख पत्रिकाओं में उनकी कविताएं लगातार प्रकाशित होती रही थीं। वर्ष 2005 में निर्मला ठाकुर का काव्य संग्रह कई रूप कई रंग और 2014 में हंसती हुई लड़की राधा कृष्ण प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी।
Birthday of Joe Walsh, American guitarist, singer, songwriter, who has performed with three successful bands, Eagles, James Gang, Ringo Starr, and his all-star band. A versatile guitar player, Walsh's abilities on acoustic, electric and slide guitar have also made him well-regarded as a featured player or guest soloist. A sample of Take It Easy, live version, with Walsh playing all electric rhythm and acoustic. Here goes, friends.
Seven women on my mind. Four that wanna own me, two that wanna stone me, one says she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy.
Or प्रसिद्ध शायर अहमद नदीम कासमी की आज जयंती है। वो एक सफल संपादक थे और उन्होंने फनून के नाम से एक अदबी रिसाला भी जारी किया था, जिसे आजीवन पूरी लगन के साथ निकालते रहे। अहमद नदीम कासमी की प्रसिद्ध कृतियों में प्रमुख हैं धड़कनें, जो कि 1962 में प्रकाशित हुई और बाद में रिमझिम के नाम से प्रकाशित हुई और फिर इसी नाम से जानी गई, जलाल ओ जमाल, शोले गोले और दश्ते वफा मुहित, सभी उनके ये कविता संग्रह प्रकाशित हुए।
Tributes to Nadine Gordimer, a South African novelist and short story writer whose major theme was exile and alienation. She received the Nobel Prize for Literature in 1991 and Booker Prize in 2014. In addition to writing, she lectured and taught at various universities in the United States during the 60s and 70s. In 2007, Gordimer was awarded the French of Legion of Honor.
Aur aaj jayanti hai मिल्खा सिंह की। जी हाँ, मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को भारत के ऐसे प्रसिद्ध धावक के रूप में हुआ जिन्हें लोग फ्लाइंग सिख के रूप में जानते हैं। सन 1956 में मेलबर्न में आयोजित हुए ओलंपिक खेलों में उन्होंने पहली बार 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में भाग लिया। मिल्खा सिंह ने 1958 में कटक में आयोजित नेशनल गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर स्पर्धा में रिकॉर्ड बनाए। इसके बाद उसी साल टोक्यो में आयोजित हुए एशियाई खेलों में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और श्रोताओं, मिल्खा सिंह को मिले फ्लाइंग सिख की खिताब की कहानी बेहद दिलचस्प है और इसका संबंध पाकिस्तान से है। 1960 के रोम ओलंपिक में पदक से चूकने के बाद मिल्खा सिंह के मन में खासा मलाल था। इसी साल उन्हें पाकिस्तान में इंटरनेशनल एथलीट कंपटीशन में हिस्सा लेने का न्योता मिला और पाकिस्तान में उस समय एथलेटिक्स में अब्दुल खालिक का नाम बेहद मशहूर था और उन्होंने उन्हें हराकर जो रेस थी वो जीती और इसी के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। तो श्रोताओं, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज का सवेरे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जाए, तो अनुमति दें मुकेश कुमार और सुभद्रा रामचंद्रन को कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नाउ समाचार प्रभात हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलो द मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।